नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के लिए एक मजबूत और सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में डॉ. जयशंकर ने बताया कि आतंकवाद के सभी रूपों में भारत और अरब देशों को समान रूप से खतरा है।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
सीमा पार आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से प्रभावित देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक अटल कानून होना चाहिए।
अनकॉम्प्रोमाइजिंग यूनिवर्सल लॉ।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा जनसांख्यिकी जैसे कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदला है। उन्होंने गजा में शांति योजना को आगे बढ़ाने को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा प्राथमिकता बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव और अरब देशों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत और अरब देशों के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया। श्री मोदी ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन भी दोहराया और गजा शांति योजना सहित शांति प्रयासों का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली में सूडान के विदेश मंत्री मुहिलदीन सलीम अहमद इब्राहिम के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बजट पूर्व परामर्श बैठकें की और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बंगाल की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाया है। राज्यसभा सांसद सुनीत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 62 वर्षीय सुनीत्रा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पति अजीत पवार का इस सप्ताह की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने पर सुनीत्रा पवार को बधाई दी है। पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय ने आज सिंदूर शौर्य सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समारोह में उन कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्हें असाधारण वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए गए। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इसराइल यात्रा के बारे में शामिल ईमेल को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री के इसराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में किए गए शेष सभी संदर्भ एक दोषी अपराधी के निराधार और भ्रामक बातें हैं। पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 271 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 225 रन ही बना सकी। ईशान किशन ने सर्वाधिक 43 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली। एलिना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में आज एलिना ने आर्याना सबालेंका को हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल कल कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।